लेक्चर नंबर 3 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धे आचार्य भगवान से लिखित जो अष्टपाहुड़ है उस अष्टपाहुड़ के हम जो अपने सामने शास्त्र है उसके पेज नंबर 14 पर आए हैं। यहाँ हमने कल पढ़ा था, फिर भी ये बात बता रहे हैं कि सम्यक तो जो होता है वह तो स्वपरिणाम से ही होता है, स्वरूप में यथाचित यथोचित श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसी में लीनता करना, ये दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन गुणों के परिणति की अपेक्षा से सम्यक तो होता है ऐसा कहने में आता है। लेकिन वो सम्यक तो जब होता है तब वहाँ निमित्त रूप से बाह्य कारण भी अलग अलग गति के जीवों के लिए होता है। तो ये हमने कल जो कुछ देखे थे 5-6 कारण तो उसमें से लिखा है, उनमें से कुछ के तो अरिहंत बिंब का देखना, ये किसको किसको होगा, ये निमित्त कारण, ये हमें देखना था कल। जिनेंद्र के कल्याण आदि की महिमा देखना, आप सोच के आए हैं ना उसके ऊपर, भूल गए? अच्छा, कौन बताना चाहेगा? नलिन भाई आप बताएंगे? हाँ आप बता रही हैं, हाँ बोलो बोलो। बहुत अच्छा, अरिहंत को देखना ये जो है ना, यानी उनका अवलोकन करना, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्ते हिम, इसको क्या भूलने का है, ये तो भाई सोचेंगे यहाँ बैठे बैठे तब भी हमको ज्ञान में आ जावे ऐसी बात है। तो कहते हैं उसके लिए ये देव को, देव गति के जीवों को, मनुष्य गति के जीवों को और तीरंज गति के जीवों के लिए ये जिनबिंब ये बाह्य कारण हो सकता है। और कुछ के जिनेन्द्र कल्याण का आदि की महिमा,
वो हाँ, भी तीनों की,
वो तीनों को होंगे ना, क्योंकि हाजिर तो तीनों ही होते हैं। अब आगे कुछ के जाति स्मरण देव और नार की, हाँ तो इसमें चारों गति शामिल है भाई। कोई बात नहीं, कुछ के वेदना का अनुभव, हाँ बिना पूछे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा अनुभव है ना, ये आत्मा का भाई, वेदना का, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ कुछ के धर्म श्रवण, हाँ चारों गति, आप क्या कहते हैं, मनुष्य गति, और हमने हाँ देव मनुष्य तीर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने तो सुना है सीता का जीव नरक में जाकर रावण को
तीसरे नरक तक हाँ जाके उपदेश देने वाले,
तो यानी नरक गति के जीव भी उसमें शामिल है ना, ऐसा ये मत करना, बहिष्कार मत करना। और कुछ के देवों की रिद्धि का देखना, हाँ अभी ये कौन बताएगा, हाथ उठा के बोलना हो, दिव्या बिन कुछ बताना चाहती है मेरे ख्याल से, नहीं चाहती, अच्छा बापा आप, देवगति के जीवों की ही बात है ये। चलो देखो ये क्या होता है, ये कहीं अलग अलग शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है और वो हमने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो हम थोड़ा सा अपना उपयोग केंद्रित करेंगे, आज बात आसान है। जैसे आपने कहा कि भाई ये जो क्या कहा धर्म के श्रवण, तो हम सोचेंगे भाई धर्म के श्रवण कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कि वो हमारे सिंह का तो उपदेश दिया था तो ये तीन जगती में हो सकता है, मनुष्य भी ये है और क्या है रह गए देव, देव भी तो समशरण में आते हैं, अब वो तो नरक गले तो आते नहीं क्या करें अभी, लेकिन वहां देव जाके उपदेश देते हैं, तो इस तरह से हम सोचेंगे तो बहुत आसानी से उसका उत्तर मिल सकता है। इस तरह से ही हमें स्वाध्याय करने की क्या बोलते हैं आदत रखनी चाहिए। ये आपको टेंशन देने के लिए नहीं, हमारी बहन तो सीधा बोल देते हम भूली गए, अरे क्या करें भाई ऐसा नहीं चले पापा। हाँ ये बात ध्यान रखना हो, ये बाह्य निमित्त है, बाह्य कारण है, उससे किसी को सम्यक दर्शन होता हो ऐसी बात नहीं है, ये तो जीव के स्वयं के अपने परिणाम है, वो होंगे तो ये आगे वाली बात हम आरोप करेंगे। देखो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, हाँ वो एक दूसरे को उपदेश भी देंगे या श्रवण यानी कम से कम जो डिस्कशन तो करेंगे, वैसे नीचे के इसमें भी हो सकता है, वहां तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, वो बात छोड़ देना कि हाँ सर्वार्थ सिद्धि में, लेकिन निचले स्वर्गों में हो सकते। अभी देखो हम इमेजिन करेंगे, अभी नौवे ग्रेवेक में कौन कौन से टाइप के जीव होते हैं, वहां पर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तो हो सकेगा कि मान लो कि अभी मैं और हमारे अश्विन भाई, हाँ आगे चल के अश्विन भाई तो सम्यक दृष्टि हो गए और हमने तो एकदम ऐसा तप किया, द्रव्यलिंगी मुनि और दोनों ही कहाँ गए, और उनको याद आ रही ये मुझको सिखाता था, लेकिन अभी भी ये मिथ्या दृष्टि रहा है, तो उनको भाव होगा कि उसको उपदेश देंगे यानी हम मुझको, हो सकता है ना ऐसा पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। अब सेकंड लाइन पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 15। इत्यादि बाह्य कारणों द्वारा मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने से उपशम सम्यक तो होता है, तथा इन सात प्रकृतियों से प्रकृतियों में से छह का तो उपशम या क्षय हो और एक सम्यक प्रकृति का उदय हो तब क्षोपशम सम्यक तो होता है।
ये छह का उपशम या क्षय जो कहा है वो कैसे समझना चाहिए? हाँ मैंने पूछा छह का उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय उसको क्या कहेंगे? शोभम सम्यक तो छ का क्षय ये कैसे होगा? छ का क्षय और एक हाँ, उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक।
क्षय की बात चल रही है,
क्षायिक समय दृष्टि होने जा रहा है तो है तो वो वेदक समय दृष्टि शोभम अनंत अनुबंधी की विषय योजना करता है, उसके बाद मिथ्यात्व का क्षय करता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है, एक सम्यक प्रकृति सत्ता में है अंतर्मूर्त में वो भी क्षय होने वाली है तो उसको भी कृतकृत्य वेदक कहेंगे। एक्चुअली वहां क्षोभशम शब्द घटित नहीं होगा, वहां उसको वेदक कहेंगे क्योंकि वेदन उसको सम्यक प्रकृति का चल रहा है।
जनरल बात है।
हाँ ये तो कहने के लिए बताया, तो इसलिए यहाँ
अभी वहाँ भले न छ की ये हो गई है लेकिन है तो वहाँ क्षोभशम सम्यक ही, इसलिए उसको क्षोभशम सम्यक अभी तक तो वो क्षायिक तो हुए नहीं ना,
इसीलिए उसको वेदक कहा। हाँ।
हाँ। वही तो आप कह रहे हैं तब क्षोभशम सम्यक तो होता है। अब ये जो पूछ रहे हैं उसके पहले मुझे ये पूछना था उपशम कब होता है, छ का उपशम कैसा होगा? हाँ डॉक्टर वीरेश भाई नलिन भाई हाँ बोलो बोलो तो उसको आप शादी मिथ्या दृष्टि क्यों कर रहे हैं? जो उपशम सम्यक तो किया और तुरंत वो क्षोपशम में गया, तो अनंतानुबंधी का उदय होगा कि नहीं वहां? अच्छा, चौथे गुण स्थान में क्षोपशम का उदय होगा?
अनंतानुबंधी का पूछ,
आई एम सॉरी, अनंतानुबंधी का क्षोपशम सम्यक के उदय होगा? हाँ, तो वो चार हो गए। अब वहां मिथ्यात्व का उदय होगा कि नहीं चौथे गुण स्थान में, और सम्यक प्रकृति का? वो तो वहां है, उनके लिए इन्होंने एक शब्द भी बताया था।
आपको कहना है
सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और चार अनंतानुबंधी का उदय नहीं, वो सारे उपशमित है। अब उस उपशम जो किया ना, उसका नाम बताया था आपने, बोलो अभी। अप्रशस्त उपशम,
उदय में नहीं आना, उसको अप्रशस्त उपशम कहा।
तो वो सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है, उपशमित है। इसलिए यहाँ कहा कि सात प्रकृतियों में से छह का तो उपशम, और ये क्षय वाली जो बात है, तो अभी आपने, आपको उज्ज्वला ने बताया था कि वहाँ ये अनंतानुबंधी का भी क्षय हो गया है, मिथ्यात्व का भी हुआ है, और सम्यक मिथ्यात्व का भी हो गया है। अभी सिर्फ एक बाकी है, कौन सी? सम्यक प्रकृति। तो वो उस समय क्षयक्षम सम्यक तो होगा, वो सम्यक प्रकृति का भी नाश हो जावे तो वो क्षायिक हो जाएगा। इसको मंदा ने एक शब्द बताया था, कृतकृत्य वेदक उस अवस्था के, लेकिन वो वेदक सम्यक दृष्टि है, यानी क्षयक्षम सम्यक दृष्टि। संयोजनक,
उसको उपशम नहीं कहते, उसको भी संयोजना कहते। सत्ता में पड़ी है, उदय में नहीं आ रही है, उदय रूप जो निषेक है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप से एक समय का पलट कर उदय में आता है, उसको विसंयोजना नहीं कहते। विसंयोजना उसको कहते जो सत्ता में जितना कुछ पड़ा है अनंतानुबंधी, वो सारा का सारा संक्रमित हो जाना, उसको कहेंगे विसंयोजन। विसंयोजना के बाद आगे चलकर मिथ्यात्व का क्षय कर दिया तो हम कहेंगे इसका भी क्षय हो चुका, अन्यथा विसंयोजना के बाद फिर मिथ्यात्व में जा सकता है तो उसको क्षय तो नहीं कहेंगे। क्षय जब कहेंगे वो तो कंप्लीट प्रोसेस है, नॉन रिवर्सिबल, और विसंयोजना इसलिए कहते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। सदवस्था रूप आपका प्रश्न है, क्षोपशम की परिभाषा हमने सदवस्था रूप उपशम देखा, और यहाँ आप अप्रशस्त उपशम कह रहे हो, उसमें कुछ अंतर है क्या? नहीं, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सदवस्था रूप उपशम यानी वो तो पड़ा है, उदय में नहीं आ रहा, अप्रशस्त उपशम भी उसी को कहते हैं। ऐसे तो जो जो प्रकृति है सत्ता में और उदय में नहीं आ रही है, सबको हम अप्रशस्त उपशम कह सकते हैं। वो वाले औपशमिक भाव वाला उपशम नहीं, ख्याल में है ना, जिसमें औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र होता है, जिसको हम प्रशस्त उपशम कहते हैं, वो बात अलग है। उसमें अंतर पड़ता है और अंतर के बाद ऊपर द्वितीय स्थिति में पड़े हुए निषेकों का उपशम किया जाता है, वो यहाँ नहीं। यहाँ तो बस एक समय जो उदय वाला समय है उसके ऊपर ये निषेक पड़े हैं, उदय में आते आते सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे यहाँ पर, और अनंतानुबंधी वो अप्रत्याख्यान वर्णादि आदि रूप से उदय में आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे अभी।
ये तीसरे लाइन से दोबारा पढ़ रहा हूँ, तथा इन सात प्रकृतियों में से छह का तो उपशम या क्षय हो और एक सम्यक प्रकृति का उदय हो, तब क्षयक्षम सम्यक तो होता है। इस प्रकृति के उदय से किंचित अतिचार मल लगता है। कौन से? सम्यक तो जब है ना, तो उसमें सम्यक प्रकृति का उदय है क्षयक्षम सम्यक तो में, तो वहाँ कह रहे हैं कि ये प्रकृति का उदय चल रहा है, वो तो अपोजिट पार्टी वाली है ना, मिथ्यात्व कर्म का ही वो एक पार्ट है ना, तो वो प्रकृति का उदय होने से क्या हो रहा है? सम्यक में, सम्यक पने में किंचित अतिचार मल लगता है, उस अतिचार मल के नाम किसको मालूम है? हाँ बोलो बोलो। चल मल अगाढ़ दोष, ये चांद मल जैसा चल मल मत करना, तीन अलग नाम है वो। हाँ ऐसा ना होता ना, चांद मल, चंदन मल,
टोडर मल,
अच्छा टोडर मल, वैसा ये चल नामक दोष जुदा है, मल नामक दोष जुदा है, और अगाढ़, तो ये इस तरह के तीन मल है। तथा इन प्रकृतियों का सत्ता में से नाश हो, इन सात प्रकृतियों का सत्ता में से नाश हो, तब क्षायिक सम्यक्त होता है। यहाँ तीनों ही सम्यक्त्व की परिभाषा इन शॉर्ट में दी है हमें। इस प्रकार उपशमाधिक होने पर,
उपशमाधिक में तीनों कौन कौन लेना, उपशम क्षोपशम और क्षय, क्षायिक।
जीव के परिणाम भेद से तीन प्रकार के होते हैं। वे परिणाम अति सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए इन प्रकृतियों के द्रव्य पुद्गल परमाणुओं के स्कंद है, वे अति सूक्ष्म है, और उनमें फल देने की शक्ति रूप अनुभाग है वह अति सूक्ष्म है, वह छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं है। फिर भी हम उसका पढ़ाई कर रहे हो। हाँ अनुभाग विभक्ति चल रही ना, पर वो तो जितना केवली भगवान जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं। क्षेपक्षम में उतनी ताकत है, लेकिन फिर भी वो जितनी डिटेल में और सही रूप से जानते हैं उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तथा उनका उपशमाधिक होने से, यानी किसकी बात चल रही है, कर्मों की, जीव के परिणाम भी सम्यक रूप होते हैं, वे भी अति सूक्ष्म है, वे भी केवल ज्ञान गम्य है। तो वो जो परिणाम जो है ना, शुद्ध परिणाम, वो केवल ज्ञान गम्य है। तो लोगों ने उसका अर्थ क्या निकाला, तुमको सम्यक दर्शन हुआ क्या नहीं? अरे वो तो केवली जाने भाई, हम तो कुछ नहीं जाने। ऐसा नहीं है, उसके किस प्रकार के कितने कौन से परिणाम चल रहे हैं वह जीव भले नहीं जानता हो, लेकिन अपने भाई आपने शक्कर खाई है तो बाजू वाले को स्वाद आएगा कि नहीं, वैसे हमें स्व का अनुभव हुआ है तो हमें उसका अनुभव यानी ज्ञान तो अवश्य होगा। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि वो जो सूक्ष्म भेद है उसमें वह केवल ज्ञान गम्य है। देखो क्या कह रहे हैं, ये चौथी लाइन है ना नए पैराग्राफ की। तथा उनका उपशमाधिक होने से जीव के परिणाम भी, यानी उनका यानी ये कर्मों का सम्यक रूप होते हैं, वे भी अति सूक्ष्म और वे भी केवल ज्ञान गम्य है। तथापि जीव के कुछ परिणाम छद्मस्त के ज्ञान में आने योग्य होते हैं, वे उसे पहचानने के बाह्य चिन्ह है, यानी हमें सम्यक तो हुआ है कि नहीं उसके बाह्य चिन्ह अभी बता रहे हैं, उनकी परीक्षा करके निश्चय करने का व्यवहार है। ऐसा न हो तो छद्मस्त व्यवहारी जीव के सम्यक्त्व का निश्चय नहीं होगा और आस्तिक का अभाव सिद्ध होगा, व्यवहार का लोप होगा। आस्तिक यानी जो वस्तु है उसका हैपना जो है वही लोप हो जाएगा, मतलब यह महान दोष आएगा। इसलिए बाह्य चिन्ह को
बाह्य करना,
ये ब्राह्मी तेल वाला मह हो गया,
ब्रह्म जैसा ब्राह्म केला है।
बाह्य को, बाह्य चिन्हों को आगम अनुमान तथा स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए, यानी हमें सम्यक तो हुआ है कि नहीं, या कई अन्य बात जो है उसको हम कैसे आगम के माध्यम से हम अनुमान लगाएं। और तीसरी बात, मान लो कि अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ तो अनुमान लगाए कि नहीं मुझे सम्यक तो हुआ है, इस तरह से। और स्वानुभव,
देखो स्वानुभव को बाह्य चिन्ह में डाला है क्यों वीरेश भाई, क्या कहा, आत्मा की अनुभूति हुई, आनंद अपने को आया और उसको बाह्य चिन्ह में डाला। हाँ भले नहीं अतीन्द्रिय, परंतु हुआ तो ज्ञान अपने को ना। तो क्या इंद्रियों को हम अस्व में डालेंगे क्या? कौन कहना चाहते हैं? लक्ष्मी बहुत अच्छा, ये पंचाध्याय में पढ़ा था हमने, सम्यक दर्शन जो हुआ है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण में जो कोई उसके परिणाम है, श्रद्धा गुण वाले परिणाम, वो तो केवल ही गम्य कहे, परंतु क्या जीव को पता चलता है कि नहीं सम्यक हुआ कहने? तो होता है। कैसे पता चला? आत्मा का अनुभव हुआ। अनुभव ये ज्ञान की पर्याय है, आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए वो सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह कहा। क्योंकि सम्यक्त्व का चिन्ह इटसेल्फ जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, परंतु वो पर्याय तो डायरेक्ट ये इस गुण की पर्याय, ये इस गुण की पर्याय, ऐसा तो नहीं किया। उसको एक अखंड आत्मा का अनुभूति का आनंद आ गया, तो इसलिए स्वानुभव को यहाँ बाह्य चिन्ह में लगाया है। ख्याल में आती बात? वहां क्या शब्द आया था पंचाध्याय में, याद है? ज्ञान की कहो, आत्मा की कहो, आनंद की कहो, एक ही है ना, अनुभूति यानी स्वानुभव। नहीं नहीं, वो शब्द नहीं आया था। देखो लक्षण के दो प्रकार होते हैं, कौन से? एक होता है आत्मभूत लक्षण, जो चीज है उसी का वो लक्षण, और अनात्मभूत। कैसे? हमने कहा ये चश्मे वाले हैं, ये क्या हुआ, चश्मा उस जीव का नहीं, वो तो उसी, ये लाठी वाला, ये टोपी वाला है, ये अनात्मभूत, उस वस्तु में वो नहीं, वो तो अन्य चीज के साथ संयोग है। अब यहाँ श्रद्धा गुण को श्रद्धा गुण के पर्याय के द्वारा नहीं पहचाना, परंतु श्रद्धा गुण के पर्याय को ज्ञान गुण के पर्याय के द्वारा पहचाना। कैसा? आत्मा का अनुभव हुआ, ये ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की पर्याय है, और उसके द्वारा निर्णय क्या हुआ, यहाँ सम्यक दर्शन हुआ है। तो इसको अनात्मभूत लक्षण कहा सम्यक दर्शन का, और यहाँ उसी को बाह्य लक्षण कहा अनात्मभूत। क्यों? आत्मने स्व, जो श्रद्धा का पर्याय, श्रद्धा के पर्याय से श्रद्धा को जानना, वो स्व लक्षण हुआ। और ज्ञान की पर्याय से श्रद्धा की पर्याय को जाना हमने, वो स्व से बाह्य लक्षण हुआ ना, इसलिए इसमें यहां उसको बाह्य लक्षण में डाला है, और पंचाध्याय में उसको अनात्मभूत लक्षण कहा है। क्योंकि समय एक ही ना, सम्यक तो प्राप्ति का समय और स्वानुभूति का समय। अब बाद में सम्यक तो चलता रहेगा, परंतु हर समय वो स्वानुभव नहीं चलता रहेगा। ज्ञान तो चलेगा, परंतु उपयोग रूप नहीं ज्ञान चलेगा। उपयोग रूप जो हम स्वानुभव कहते हैं, शुद्धोपयोग जिसको कहते हैं, वो शुद्धोपयोग न भी हो तो भी सम्यक तो चल रहा है। ख्याल में आता है? कुछ नहीं चल रहा। वीरेश भाई ख्याल में आती है बात? हाँ
नहीं, अभी तो पूछना हो भाई।
आत्मधर्म किसके पास आता है, पढ़ना इस बार, ये बहुत अच्छा है, गुजराती में,
गुजराती वाला।
हाँ हाँ,
नहीं हिंदी भी आती
है। ये पंचाध्याय के आधार से वो बेंच रिबेन ने तत्व चर्चा की, उसमें बहुत अच्छी है।
अब कहते हैं इसलिए बाह्य चिन्हों को आगम अनुमान तथा स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए। वे चिन्ह कौन से है सो लिखते हैं। मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है। ज्ञान का विशेष है यानी क्या? ज्ञान की पर्याय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्ञान की पर्याय है। देखो देखो, लोगों को पूछा ना भाई अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है, तो लोगों को लगता है चारित्र गुण की पर्याय है और अन्य कुछ बता दे, लेकिन फिर बताना है वेदन करना, यह भी ज्ञान गुण की पर्याय। वेदन कहो, अनुभूति कहो, वह ज्ञान की पर्याय ने, ज्ञान का विशेष है। तथापि वह सम्यक तो होने पर होती है, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। अभी जो उज्ज्वला ने बात बताई वही बात यहाँ पर बताई है, लेकिन उन्होंने ग्रंथ का उल्लेख करते हुए जो बात हमने पंचाध्याय में पढ़ी थी उसका अभी स्मरण करके बताया। क्या कहा? वह जो अनुभूति ज्ञान का विशेष है, वह सम्यक्त्व, सम्यक्त्व यानी यहाँ लेना सम्यक दर्शन होने पर होती है, इसलिए इस ज्ञान के विशेष को बाह्य चिन्ह कहते हैं। ज्ञान तो अपना अपने को स्वसंवेदन रूप है, उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का
रहित रह गया विकार रहित, दो बार रह चाहिए।
ये तो मेरी स्पेशलिटी है, जो गलत होगा उसको सही करके पढ़ता हूँ।
बीच में भंग करना भी नहीं चाहते, परंतु वो गलती ऐसी रह जाएगी ना, इसलिए बताना भी जरूरी समझते
हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बताइए, मैं मेरी बखान कर रहा हूँ, और जो सही होगा वहाँ कुछ गलत पढ़ लेता हूँ।
देखिए, वो पढ़ते पढ़ते फिर उसमें ब्रेक हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करें।
मैंने मार्क किया है कि मेरे मन में कुछ अन्य विचार चलते होंगे तो पढ़ने में जरूर गलत आता है।
हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, छद्मस्व की जो भी कुछ जानने में आता है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, तो क्या उसका वो, हाँ क्योंकि देखो, तो क्या वो बाह्य चीज ज्ञान के द्वारा ही जानी जाती है, ऐसा ही प्रश्न है ना आपका, क्योंकि छद्मस्थ एक एक गुण की पर्याय को अलग अलग नहीं जानेगा। आपको दुख हो रहा है, कैसे जाना, दुख की अनुभूति ही कहेंगे ना हम उसको, अनुभूति। हाँ वही तो, ज्ञान गुण की पर्याय ही अनुभूति जहां कहते हैं। क्रोध आया, क्रोध आया कैसे पता चला, जान नहीं, ज्ञान नहीं, हम कहेंगे क्रोध की अनुभूति हो रही है, ये नहीं होती वो बात नहीं, भय लगता है। तो ये ज्ञान में ये सारी बातें जानने में आती है, वहां इसीलिए कहा ना, उससे उसका भेद ज्ञान करना है, क्योंकि वो पर्याय भिन्न है और ये ज्ञान भिन्न है, वहां राग से विकार से भिन्न कर भिन्नता जाननी है। अब यहाँ जो कहते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय डायरेक्ट, ऐसी एक गुण की ये पर्याय श्रद्धा गुण की, ये चारित्र है, ये ज्ञान की है, ये ऐसी बात नहीं है। वो अखंड जो कोई आनंद भी जो है, वो अखंड ऐसा जो कोई सभी गुणों का एक रूप रस ऐसा जो आनंद है, उसका वेदन हुआ है। वेदन जो कहते हैं वो ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, और ये मिथ्यात्व अवस्था में भी जीव का प्रकट लक्षण है। ज्ञान हो रहा है ये तो सभी जानते हैं ना, कि उसके लिए सम्यक दृष्टि होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बारहवें गुणस्थान के बाद का अर्थ होता है केवल ज्ञानी होने पर। केवल ज्ञानी होने पर वो अपने प्रत्येक गुण की पर्याय भिन्न भिन्न जानेगा। आपने क्या बात, अनंत गुण, अनंत जीवों के अनंत गुणों के सभी तीनों काल की पर्याय एक समय में जानेंगे, सभी जीवों के भी। वो हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय के अविभाग जानने का कार्य ही ज्ञान के द्वारा हो रहा है। जानना 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 ये कार्य ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, परंतु अभी हम ज्ञान के द्वारा श्रद्धा गुण की पर्याय को नहीं वेद रहे हैं, हम आनंद को वेद रहे हैं। यहाँ स्वानुभूति वाली जो ज्ञान की पर्याय दी है, वैसे जानना तो ज्ञान के द्वारा ही होता है। आपका प्रश्न क्या है, यहाँ भी ज्ञान के द्वारा ही जान रहे, और केवल ज्ञानी भी ज्ञान के द्वारा ही तो जान रहे हैं, इसलिए कहते ना वो तो पर को जानता ही नहीं, ज्ञान को ही जानता है, ऐसी जो कहने ये जो कथन है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ पता चल रहा है, ख्याल में आता है। परंतु उनको एक एक गुण की पर्याय अलग अलग ज्ञान में आती है, स्व की नहीं पर की भी, और उसके एक एक गुण के एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद भी उनके ज्ञान में भिन्न भिन्न सबके अलग अलग, एट अ टाइम एक समय में। वैसे यहां छद्मस्थ जीव है, उसको सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय हुई है, उसके जो परिणाम है वो उसके कैसे ख्याल में आते हैं, तो उसको आनंद की अनुभूति हुई, स्वानुभव जिसको कहेंगे,
ज्ञान के कारण,
ज्ञान की पर्याय है ना, स्वानुभव ये ज्ञान की, अनुभव कहा, अनुभव कहो, वेदन कहो, ये ज्ञान की पर्याय है। इसलिए यहाँ प्रश्न इतना ही, उसको बाह्य चिन्ह है, क्योंकि जीव को पता चलता है कि नहीं चलता अपने को समय दर्शन हुआ, तो लोग कहते कि समय दर्शन होता है, अपने को पता नहीं चलता, केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो केवल ज्ञानी जानते हैं, तो ये अपने सही मार्ग पर है कि नहीं है, ये कैसे जानेगा जीव? तो ये उसको अपने भी जानने में आता है। इसलिए स्वानुभव से प्रमाण करना, ऐसा जो कहते हैं, यहाँ लिखा ना ऊपर, आगम अनुभव तथा स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए। ये बाह्य चिन्हों को भी, अपने को समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये दूसरे किसी को कैसे पूछेंगे, और दूसरा क्या जानेगा कि इसको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, वो तो उसके अपने ज्ञान की पर्याय है। तो अपने को हुआ कि नहीं हुआ ये स्वयं कह सकते हैं, और बिल्कुल उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है हुआ होगा, वो निशंकित अंग नहीं उसका फिर। हाँ बिल्कुल, उसको भी यानी उसको वही तो पता चला ना, वो समय दर्शन हो गया।
वो क्या कहते बोलना,
उनका ऐसा कहना है कि जो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, क्या भी उसको ऐसा ज्ञान में निशंक निर्णय हो जाता है? हाँ, क्योंकि उसके सभी पूरा मोक्ष मार्ग, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, सभी पूरा निशंक हुआ है। और जब वो अपने अंतरंग में स्थिरता को या तत्व के विचार में ऐसा डूब गया है कि उसका उपयोग अपने आप अपने को पकड़ लेता है, और उस काल में उसको आनंद की ऐसी अनुभूति उसने पहले कभी की ही नहीं थी, तो ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की उसको अनुभूति हुई। तो अनुभूति हुई उस समय में तो ऐसे तो हो जाएंगे, अरे ये कहां से क्या आनंद आ गया, तो उसको पता चला अपने को सम्यक दर्शन हो गया है।
नहीं नहीं, आपका ऐसा पूछना है, उस समय उनकी निशंकित अंग होगा कि नहीं?
बिल्कुल होगा।
तो हाँ, मैं कहता हूँ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या सम्यक दर्शन या निश्चय अनुभूति जो हुई है उसकी बात, और उसके साथ साथ में ये निशंकित अंग, निकांक्षित अंग। हाँ सब, हाँ नहीं
नहीं, पहले समय में थी ही नहीं,
नहीं ना,
जो नहीं थी
बढ़ने
वो
के लिए अतीन्द्रिय आनंद कहा था उन्हें,
अतीन्द्रिय आनंद।
आपका जो कहना है कि उसके पहले समय में उसको जो आनंद था उससे जरा बढ़कर आनंद हुआ, उसको तो अभी तक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ही नहीं हुआ है, वो इंद्रिय आनंद को ही आनंद मानता है जो स्वयं दुख स्वरूप है। ख्याल में आया ना, ये अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों के माध्यम से जो हम आनंद मानते हैं वो छोड़कर आत्मिक आनंद जो है उसको अतीन्द्रिय आनंद कहेंगे। उसको तो उसको पता ही नहीं था, लेकिन जब इधर निश्चय हुआ तो साथ में व्यवहार रूप जो आठ अंग है, आठ मल है, आठ दोष है, उससे रहित वगैरह जो बताते हैं, वो 25 दोषों से रहित है, ये तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जैसा हमने अभी कर्म निर्जरा में देखा था कि अशुद्ध का खिर जाना और शुद्धि का बढ़ना, और तीसरा जो है वो कर्मों में खिरना, ये तीनों एट ए टाइम हो रहे हैं। हम यहाँ दो की बात करेंगे कि अशुद्धता उसका ह्रास होना और शुद्धि का बढ़ना, ये दोनों एट ए टाइम एक समय में हो रहे हैं, कहने में टाइम लगेगा। वैसे यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन किसी जीव के हो जाता है तब साथ में ये व्यवहार जो परिणाम है ना, अभी हम तो केवल सच्चे देवगुरु शास्त्र का राग उसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं, लेकिन आपने जो निशंकित अंग आदि की बात करी वह भी उस समय उसको प्रकट होंगे ही होंगे। ये पहले से ऐसे, ये ऐसा ही स्वरूप है, ऐसी बाह्य बातें भी उनके ज्ञान में आ रही हैं, और जब यहाँ हो गया तो वह निश्चित हो गया फाइनल, ये ऐसा ही है। अभी ये कहने में बहुत समय लगता है, होता है एक समय में।
मैं यही हूँ ये तो निर्णय पहले ही होते होते वो तो उसमें उसके उपयोग
नहीं, निर्णय तो अभी भी है डॉक्टर, श्रद्धा ने एक्सेप्ट नहीं किया है।
देखो करण लब्धि में गया है
हो ना, देखो देखो अभी यहाँ क्या बात चल रही है।
देखो मैं कौन हूँ ये शुद्ध नय ने जो बताया है ना, अखंड अभेद आत्मा, ये अखंड मैं हूँ, मैं जीव हूँ, उसका कैसा हूँ ये भेद में पहले जान लिया उसने। वो भेदों का जो स्वाध्याय में आदि से आगम से ला जाना, अनुमान से जाना, वो उसमें आ जाएगा सब। मैं यही हूँ ऐसा सब वो अनुमान से उसने निर्णय पक्का किया है। अब उसमें उपयोग को अपने तद्रूप उसी में लगा लिया है तत्व विचार में, तब ऐसा एक मोमेंट आता है कि वो ये मैं इसमें जानू, वो उसको जानना छोड़ दे, ये कुछ नहीं है वहां पर। उपयोग को तत्व विचार में तद्रूप लगाकर परिणाम आया है, तो एक समय ऐसा आता है कि विकल्प भी छूट जाते हैं और वहां अतीन्द्रिय आनंद का वहां जो कोई नजारा उसको ख्याल में आता है, तो उसको भी अचरज लगता है, अरे ये क्या हो रहा है।
देखो मैं
ये तो मुझे आनंद हो रहा है कि नहीं इसकी तरफ उसके कुछ ध्यान नहीं था, वो तो तत्व विचार में लगा था। और जब आनंद की अनुभूति हुई तो अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। संख्यात प्रदेशों में जो कुछ फवारे उठ रहे उसके आनंद के, उसको पता नहीं चलेगा, ये बात नहीं हो सकती।
उनका कहना दूसरा है, वो ऐसा कह रहे हैं कि पहले ज्ञान में ये बात पक्की होगी कि मैं इस रूप हूँ, इसलिए तो यहाँ का आगम और अनुमान ख्याल में पहले नक्की होगा ज्ञान में। ज्ञान जैसा आत्मा का त्रिकाली स्वरूप है वैसा जानेगा कब, मिथ्यात्व अवस्था में। लेकिन जब उसको श्रद्धा एक्सेप्ट करती है, ऐसा अपनी भाषा में श्रद्धा भी वैसा नक्की करती है कि वो हो ऐसा ही मैं हूं, तब उस ज्ञान को जो पहले से चला आ रहा है उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। और सुनना सुनना सुनना, मुझे बोलने दीजिए। अभी यहाँ क्या हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है। ये दर्शन जो हुआ है, श्रद्धा में जो कुछ तब्दीली हुई, सम्यकपना आया है, वो ज्ञान गुण जानेगा, इसलिए इस ज्ञान के जानने को बाह्य लक्षण कहा है। क्योंकि किसको जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को नहीं जान रहे, ज्ञान पर श्रद्धा को जान रहे, तो उसमें भी द्वैत खड़ा हो गया, तो व्यवहार है। इसलिए वो ज्ञान के जो अनुभूति स्वरूप ज्ञान है वह सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है, ऐसा बताया।
जब शुरू में आगम का अभ्यास है तो उसने सही जानकारी ली है और उस पर उसका श्रद्धा हुआ, अभी मिथ्या दृष्टि है, भगवान की वाणी सत्य ऐसे ही उसकी श्रद्धा हुई, पर भी उसको सम्यक दर्शन नहीं कहा, वो सही उसकी श्रद्धा हुई ऐसा कहेंगे। पर सम्यक श्रद्धा नाम कब आएगा, जब उसके स्वानुभव हुआ तब। तो इसीलिए कहते ये जो तत्वों के ऊपर श्रद्धा है, हमारी बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हम किसी अन्य को मानते भी नहीं है और बस हमने तत्व ये भी सुने भी है, उसका स्वरूप पहचाना है, उस पर बार बार विचार चलते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, तो भी ये जो श्रद्धा है वो ज्ञान के पर्याय कहलाएगी। अभी आप पढ़ना उसको जाके।
पढ़े आगे।
हाँ
देखो ये निचला जो पैराग्राफ है उसके दूसरे लाइन से मैं दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि हमने अन्य डिस्कशन में टाइम कमाया तो अपनी फ्लुएंसी नहीं होगी। तथापि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, तथापि वह सम्यक्त्व होने पर होती है, ज्ञान की सम्यक पर्याय, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। ज्ञान तो अपना अपने को स्व संवेदन रूप है, अपने को जान रहे, उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का अपने को आस्वाद होता है कि जो ये शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ, और ज्ञान में जो रागादि विकार है वह कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार यानी राग से आत्मा की या ज्ञान की भिन्नता की, इस प्रकार वेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के आस्वादन को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। वही आत्मा की अनुभूति है तथा वही शुद्धने का विषय है। यानी जिसको हम ज्ञान मात्र का आस्वादन कहो, ज्ञान की अनुभूति कहो, या आत्मा की अनुभूति कहो, या शुद्धने का विषय यही है कहो, वो एक ही बात है। ऐसी अनुभूति से शुद्धने के द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोग जनित है, ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त्व होता है, उसका चिन्ह है, उस चिन्ह को ही सम्यक्त्व कहना सो व्यवहार है।
व्यवहार क्यों कहा? भेद नहीं करना किया, ज्ञान के पर्याय को श्रद्धा कर, उसको सम्यक्त्व का। हाँ, तो दो भिन्न गुणों के पर्याय को एक के द्वारा दूसरे की पहचाना, इसलिए इसको व्यवहार कहा।
उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रमाणों से की जाती है। देखो देखो, ये आगम किसका बताया? सर्वज्ञ का आगम बताया, क्योंकि काल्पनिक चलेंगे नहीं ऐसा बोलते हैं, वो कल्पित को बात हम देख लिए। 45 और कितने, 25, 32, अच्छा 45 और 32, ये इसलिए कह रहे कि उनकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण इन प्रमाणों से की जाती है, यानी प्रमाण भी ये तीन प्रकार के बताए, इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। वहाँ अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदन की प्रधानता से होती है, और पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग में होने की परीक्षा, पर के वचन काय की क्रिया की परीक्षा से होती है। यह व्यवहार है, परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। व्यवहारी जीव को यानी जिसके अभी सम्यक तो नहीं हुआ है, ऐसा भी जीव होंगे, उनको कहते हैं कि व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। अनुभूति नोंद नोंद बता रहे, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है, इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। अभी बात क्लियर हुई? ऐसे बार बार नोंद देनी चाहिए ना, उन उन उसका नाम व्यवहारी जीव को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलंबन समझना। देखो इसी बात को आपको याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि म्लेंज को म्लेंज की भाषा में समझाना चाहिए, इसलिए व्यवहारी जन को व्यवहार है। और
यहाँ व्यवहारी उसी को कहा जिसको निश्चय प्रकट है।
हाँ,
ख्याल है ना, जिसको निश्चय व्यवहार दोनों है, ऐसे व्यवहारी को व्यवहार के द्वारा वो निश्चय को समझाया जाता है। यहाँ तो व्यवहार तो स्वानुभव को कहा, आगम को कहा, अनुमान को कहा, और उसके द्वारा परीक्षा हो रही है सम्यक्त्व की, निश्चय की परीक्षा व्यवहार के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको व्यवहारी जन का। पर के वचन, पर की काया की क्रिया, दूसरे को समय दर्शन हुआ है कि नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा? तो उसके वचन में क्या आता है, उसके उपदेश में क्या आता है, उसके उपदेश में भगवान का स्वरूप कैसा है, देव का स्वरूप कैसा है, तत्व का स्वरूप कैसा है, आत्मा के अनुभूति संबंधी उसके कैसे वचन है। तो जो स्वयं जिसने अपनी परीक्षा की वो पर की भी परीक्षा कर सकता है, वो तो व्यवहार का ना। और परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं।
देखो जैसा हम पूछते हैं आपको, जिसके सम्यक दर्शन हुआ है, नहीं है, क्या वह सम्यक दर्शन का मार्ग बता सकेगा? और वो भले कहे कि मैं बताता हूं तब भी, तो हम ये कैसा नक्की करें? तो कहते हैं कि उसका उपदेश चल रहा है और उपदेश में वो हिंसा को करना चाहिए ऐसा बता रहा है, या उपदेश में राग से धर्म होता है ऐसा बता रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं? क्या वो कितना पानी में है ऐसा कह रहे हैं आप? तो वो वचन, मन वचन और काया, इनके माध्यम से उनको हम देख सके। अभी देखो सम्यक दृष्टि भी किसी अन्य जीव को सम्यक तो हुआ है कि नहीं, ये भी इसी मार्ग से जानेगा कि उसकी मान्यता कैसी है, वचन में क्या बात आती है। और काया में यानी मान लो कि हम इधर उधर कहीं गए और वहां जाके के अन्यमति भगवान मतलब उनके जो मन, मैंने भी देखा ना इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ आप बताओ ना कहाँ ढूंढता बैठूं मैं। अच्छा 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 आज तक मैं वो प्रश्न दिए उधर। अच्छा देख लेते हैं, नलिन भाई याद करना, आप आ रहे हैं ना। हाँ मालूम मालूम। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि सम्यक्त्व तो केवली गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक्त्व होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते, परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा। अभी सर्वथा क्यों कह रहे हैं, तो मुझे सम्यक दर्शन हुआ है ये केवली जानेंगे कि नहीं। अभी वो सर्वथा वैसा ही होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ख्याल में सर्व मुनि सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा। ये व्यवहार क्या है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ और केवली ने वो जाना, तो केवली ने पर को जाना ये कहना भी व्यवहार है ना। सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी, और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानोगे तो व्यवहार कहाँ रहेगा। इसलिए परीक्षा होने पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं और उसी के समान स्वयं भी होगा, इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा तत्वार्थ श्रद्धांत तो बाह्य चिन्ह है, पहला बताया वो नंबर एक। अब ये दूसरा, जीव अजीव आश्रव बंध संव निर्जरा और मोक्ष ऐसे सात तत्वार्थ है, उनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से नौ पदार्थ होते हैं। उनकी श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना, तथा प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तद अनुसार ही अंगीकार करना यानी श्रद्धना, और उनके आचरण रूप क्रिया, इस प्रकार श्रद्धानादि होना सो सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। अभी तथा कहते हैं प्रथम प्रशम संवेग, यहाँ एक निर्वेद लिखना चाहिए था, है आगे है आगे लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, प्रशम संवेग निर्वेद अनुकंपा आपको चाहिए तो लिख के रखना याद करने के लिए। अनुकंपा आस्तिक्य ये भी क्या सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है। वहाँ
चार ही कहना है तो इसमें आते हैं, और इसके और भेद करेंगे तो आठ हो जाते हैं।
हाँ लेकिन यहाँ यहाँ पांच लिए है ना,
पांच ही लिए क्या।
हाँ और भी बताए हैं आगे,
मैंने पढ़ा नहीं आगे। हाँ
चलो प्रशम अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय के उदय का अभाव सो प्रशम है, यह अलग से भाषा दी है। हाँ उसके बाह्य चिन्ह जैसे कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, पर्याय में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है। क्या कहते हैं, ये अनंतानुबंधी का उदय होगा तो उस जीव को क्या कहते हैं, मिथ्यात्वी, बहुत अच्छा। अभी वो मिथ्यात्वी कैसे कैसे सोच सकता है उसकी बात बताए। क्या कहते हैं, उसके बाह्य चिन्ह फर्स्ट लाइन के बाद पढ़ रहा हूं मैं, कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान जो करता है वो कैसा है, मिथ्यात्वी। बाह्य वेश में सत्यार्थ बने का अभिमान करना, कि बाह्य वेश ऐसा होगा तो ऐसा ही है ऐसा। पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान करना, यानी पर्याय में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया, इस तरह का। यानी पज्जय मूढ़ा पर समय ऐसा जो कहा ना वो समझना इधर। बाह्य वेश में वो हो गया। पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है। वह जिसके न हो तथा किसी ने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्यादृष्टि की भांति विकार बुद्धि अपने को उत्पन्न न हो तथा वह ऐसा विचार करे कि मैंने अपने परिणामों से जो कर्म बांधे थे वे ही बुरा करने वाले हैं, अन्य तो निमित्त मात्र है, ऐसी बुद्धि अपने को उत्पन्न हो ऐसे मंद कषाय है, तथा अनंतानुबंधी के बिना अन्य चारित्र मोह की प्रकृतियों के उदय से आरंभादिक क्रिया में हिंसादिक होते हैं, उसको भी भला नहीं जानता, इसलिए उसके प्रशम का अभाव नहीं कहते। यानी प्रशम वाला जो होगा अभी तक जो बातें बताए उससे विरुद्ध बातें होगी। संवेग धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह, वह संवेग है। तथा साधर्मियों से अनुराग और परमेष्ठियों में प्रीति, वह भी संवेग ही है। इस धर्म में तथा धर्म के फल में अनुराग को अभिलाष नहीं करना, यानी अभिलाष नहीं करना चाहिए, चाहिए ना? हाँ,
इसको अभिलाषा नहीं कहते क्योंकि अच्छा, अभिलाषा अच्छा, तो इंद्रिय के विषयों की चाह को कहते हैं।
बहुत अच्छा, हाँ बरोबर। क्या कहते हैं, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग, इसको यानी इनको अभिलाष यानी अभिलाषा नहीं कहते, कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाष तो उसके कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाष नहीं कहते। यानी धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह की बात की गई तथा निर्वेद, इस संवेग में ही निर्वेद भी हुआ समझना, क्योंकि अपने स्वरूप रूप धर्म की प्राप्ति में अनुराग हुआ तब अन्यत्र सभी अभिलाष का त्याग हुआ, सर्व परद्रव्यों से वैराग्य हुआ, वही निर्वेद है। यानी उसका वेदन नहीं है, वेद मतलब उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाए, उसको निर्वेद कहते हैं। तथा अनुकंपा, सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है, तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है, किसी से वैर भाव नहीं होता, सुख दुख जीवन मरण मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता है, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में भी है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ, पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। आस्तिक्य, जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक्य भाव है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उसमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसी ही यह है, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक्य भाव है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है, यानी जिनके सम्यक्त्व होता है इनके ऐसे इसके द्वारा उनको हम पहचान सकते हैं। अब कह रहे हैं सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, अभी जो हमने देखा था ना उसी में और बढ़ा रहे हैं। संवेग, निर्वेद, गर्रा, उपशम, शक्ति, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। यह सब प्रशमादि 4 में आ जाते हैं। संवेग में निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति ये आ गए। प्रशम में निंदा और गर्रा आ गए, यानी उन्होंने सबको बता दिया किस तरह से।
हमने रत्नगण चौकाचार में देखे थे, 8 अलग बताए थे, उसी को यहाँ पहले 4 में बता दिया। मैंने बताया ना कि 8 में 8 होते हैं, वो 4 का ही विस्तार करेंगे तो 8 कहेंगे।
ये इन्होंने संवेग में ही निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति को समाहित किया था, लेकिन यहाँ 5 बताते हुए निर्वेद को अलग सा दिखाया।
संवेग और निर्वेद को अलग नंबर
है ना।
क्या क्या
आस्तिक को नहीं लिया कहते हैं? हाँ, 7 तक ही लिए हैं, आस्तिक के जोड़ देना।
आस्तिक के तो आता है इसमें एक्चुअली।
देखो देखो, संवेग, निर्वेद, गर्रा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ही दिए हैं, वो आस्तिक है उसमें लगा देना आप। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। यानी सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण है कहेंगे, उनके गुण होते हैं ऐसा भी कहेंगे, अंग है वह। उनके नाम है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वहाँ शंका नाम संशय का भी है और भय का भी है। वहाँ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालानुद्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु है। दीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ है। यानी ये जो केवल ज्ञानी है ना, यानी सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में क्या क्या बातें होती है, सूक्ष्म वस्तु भी जानी जाती है, दूरवर्ती पदार्थ भी है और अंतरित पदार्थ भी है। तो ये इनका अर्थ बताते हैं। तो कह रहे हैं ये शंका किसको कहना, तो संशय को भी शंका हो सकती है, संशय ही को, और जो भय जिसके है उसको भी शंका हो सकती है, लेकिन ये बातें सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। ये बताते बताते यहाँ बताते हैं कि ये जो धर्मद्रव्य है कि नहीं, अधर्मद्रव्य है कि नहीं, ऐसी शंका तो नहीं होती, जो सूक्ष्म वस्तु है उसके प्रति भी उसका निर्णय हो जाता है। दीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ, वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे हैं वैसे है या नहीं है, अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा सो सत्य है या असत्य, ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। जिसके यह न हो उसे निशंकित अंग कहते हैं। ये निशंकित अंग किसको कहना, इसके लिए ये सारे बातें बताई कि जो सर्वज्ञ भगवान ने बातें बताई हैं वैसा ही वस्तु स्वरूप है कि नहीं, ऐसी शंका उसके नहीं होगी। किसके? सम्यक दृष्टि के। क्योंकि मैंने तो आपको पहले बताया था ऐसे भी हमें लोक मिले हैं, ये नरक और स्वर्ग किसने देखे हैं, है कि नहीं? क्या आपके अभी इतने कोई रिश्तेदार वहां गए होंगे? या तो स्वर्ग में गए होंगे तो नरक में गए होंगे, तो कुछ आपको चिट्ठी चपाटी कुछ आई कि नहीं उनके पास से, ऐसा पूछते थे। उनको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो उस दीव को सम्यक दृष्टि कहेंगे कि नहीं? उसका तो विपरीत ज्ञान है भाई, संशय भी नहीं। तो कह रहे हैं तथा यह जो शंका होती है सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, यानी उदय में युक्त होने से होती है, पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। जो परम आत्म बुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। ये पर्याय बुद्धि जिसको है, यानी जिसने अपने को मनुष्य ही माना है, जिसने अपने को पर्याय जितना ही माना है, उसके तो क्या क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। कौन सा शंका, भय को भी कहते हैं। उसके सात भेद है, इस लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु भय, रक्षा भय, अगुप्ति भय, वेदना भय और अकस्मात भय। जिसके यह भय हो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना, सम्यक दृष्टि होने पर यह नहीं होते, ये श्रद्धा में नहीं होते। इतनी बात समझ लेना, बाकी की बात हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तकर्णमो सदा देत हो। नलिन भाई।